इनाया सिर झुकाए आईसीयू के बाहर लगी चेयर पर बैठी थी। उसके आंसू सूख चुके थे, चेहरा एकदम मुरझाकर पीला पड़ गया था। मानव को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। इनाया, अनीता जी की परेशान सी आवाज़ इनाया के कानों में पड़ी तो उसने धीरे से सिर उठाया। सामने अनीता जी खड़ी थीं, आंखों में ढेरों सवाल लिए, चिंता भरे चेहरे से उसे ही देख रही थीं, जिसमें अजीब सा डर भी खुला था। अनीता जी को सामने देखते ही इनाया की सारी हिम्मत जवाब दे गई और एक बार फिर आंखों में नमकीन पानी तैर गया। काकी, इनाया के थरथराते होंठों से धीमी सी आवाज़ निकली और देखते ही देखते वो बिलक बिलक कर रो पड़ी। अनीता जी पहले ही परेशान थी, मन में ढेरों सवाल घूम रहे थे, दिल को अजीब से डर ने घेर लिया था। अब किसी अनहोनी की आशंका से उनका दिल दहल गया, लेकिन इस वक्त इनाया की हालत ऐसी नहीं थी कि उससे कोई सवाल किया जाए और वो उसका जवाब दे सके। अनीता जी ने एक बार फिर अपने सवालों को अपने दिल में छुपा लिया और इनाया को अपने सीने से लगाकर स्नेह भरा हाथ उसके सिर पर फेरते हुए उसे चुप करवाने लगी। एक हाथ इनाया के सिर पर धीरे धीरे फेर रही थी तो दूसरे हाथ से उसकी पीठ थपथपा रही थी। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। उनकी आवाज़ नरम थी लेकिन हल्की कांप भी रही थी। वो इनाया को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी जबकि पल पल उनकी खुद की बेचैनी और डर बढ़ता जा रहा था। रो मत ऐना, मैं आ गई हूँ ना, पता मुझे क्या हुआ है, तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में यहाँ क्यों बुलाया? अब ऐसे रो रही है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, सब ठीक है ना? दामाद जी कहते कहते वो ठहर गईं, वो ऐसा कुछ बोलना तक नहीं चाहती थीं। इनाया की आंखों से आंसू और भी तेज़ी से बहने लगे, दिल गिल्ट से भर गया। वहीं उसे यूं रोते देखकर अनीता जी की घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई। अनीता जी ने इनाया को खुद से दूर किया, रोते रोते उसे हिचकियां बंद गई थीं। वो अनीता जी की आंखों में देख भी नहीं पा रही थी। सिर नीचे झुकाकर उसने कांपती आवाज़ में कहा, काकी, मानव, वो अभी आईसीयू में है, होश नहीं आया अभी तक, सब मेरी वजह से हुआ है, आज मानव की जो हालत है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अनीता जी का चेहरा एक झटके से सफ़ेद पड़ गया। आईसीयू, होश नहीं आया? हे देवा, ये क्या बोल रही हो तुम? उनकी आवाज़ में अब डर साफ छलक रहा था। उन्हें मानव के बारे में सुनकर झटका सा लगा, ये तो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इनाया की आंखों से बहते आंसू उसके पूरे चेहरे को भिगो चुके थे, आंखें और चेहरा लाल होकर सूज गई थीं। उसकी हालत देखकर अनीता जी ने किसी तरह खुद को संभाला और इनाया के कंधों को पकड़ लिया। इनाया बेटा, इधर देखो मेरी तरफ, मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है मानव को, वो हॉस्पिटल में, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो? रोना बंद करो बेटा और मुझे सब बताओ। शाम तक तो सब ठीक था, मानव सही सलामत नित्या से मिलने के लिए घर से निकला था, फिर यहाँ कैसे पहुँचा? तुम खुद को क्यों दोष दे रही हो, क्या हुआ है मानव को? अनीता जी खुद बहुत ज़्यादा डरी हुई थीं, घबराई हुई थीं, उसके बावजूद उन्होंने खुद को शांत बनाए रखा, पैनिक नहीं किया, फिर भी उनकी आवाज़ में मानव के लिए प्यार, उनकी चिंता और डर साफ जाहिर हो रहा था। इनाया ने सांस ऊपर को खींची और रुंधे स्वर में बोली, काकी, मानव, वो मानव नित्या से ही मिलने जा रहा था, लेकिन इनाया की आंखों से आंसू बहते रहे और वो टूटी बिखरी आवाज़ में उन्हें सब बताती चली गई कि कैसे मानव घर से निकला लेकिन पार्टी में नहीं पहुंचा। उसका नंबर भी स्विच ऑफ आने की वजह से नित्या और वो दोनों ही परेशान हो गए। उसके बाद काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद भी मानव नहीं आया, लेकिन उसके पास किसी अननोन नंबर से वीडियो आई। उसमें क्या था? धमकी भरा मैसेज, जीप में बैठना, मानव को ड्रग्स देना, उसकी कंडीशन, ब्लैकमेलिंग, वहाँ होटल में जो हुआ सब बता दिया, बस पिक्चर्स वाली बात छुपा गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई वो सब बताने की। वो सिर झुकाए बुरी तरह रो रही थी। मानव का किडनैप, ड्रग्स, क्रिटिकल कंडीशन। अनीता जी को लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया उनकी आंखों के सामने उजड़ गई, जैसे किसी ने बड़ी ही बेरहमी से उनके जीने का आखिरी सहारा भी उनसे छीन लिया। उनकी आंखें झिलमिला गईं और गला रुंध गया। अनीता जी की आंखों से आंसू बहने लगे, वो अब खुद कांप रही थीं। हे देवा, मेरा बच्चा, मेरे मानव के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उन्होंने रोती बिलकती इनाया को फिर से गले लगा लिया, इस बार इतनी जोर से जैसे डर से बचाना चाह रही हो। और तुम अकेली वहाँ चली गई, पुलिस को क्यों नहीं बताया, मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? काकी, वो कह रहे थे अगर पुलिस आई या मैंने किसी को भी बताया, उनकी बात नहीं मानी तो वो मानव को मार देंगे, उसके बाद नित्या को भी किडनैप कर लेंगे। मैं डर गई थी, मैं अपनी वजह से मानव और नित्या की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। वो कह रहे थे कि अगर मैंने थोड़ी भी देर की तो मानव को मार देंगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैंने सब कुछ किया जो वो कह रहे थे। इनाया के होंठ कांप रहे थे और आवाज़ बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। आज जो जो उसके साथ हुआ उसने इनाया को तोड़कर रख दिया था। ये सब मेरी वजह से हुआ काकी, मैं दोषी हूँ। मनु की ये हालत मेरी वजह से है, मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। वो लोग जो भी थे वो मुझे कायरव की जिंदगी से निकालना चाहते थे, और मुझे मजबूर करने के लिए उन्होंने मानव के साथ। इनाया सिर झुकाए फफक फफक कर रो पड़ी। ये गिल्ट उसे जीने नहीं दे रहा था। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि नजर उठाकर उन्हें देख ले, उनकी निगाहों का सामना कर सके। अनीता जी अभी तक सब जानकर हैरान और परेशान थी। उन्हें मानव की चिंता भी हो रही थी, लेकिन इनाया की ये बातें सुनकर उनके एक्सप्रेशन बदल गए। उन्होंने इनाया का चेहरा दोनों हाथों में थामा और बड़े ही प्यार से उसके आंसुओं को पोंछने लगी। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। मनु की इस हालत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। तुमने गलत नहीं किया, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। अगर तुम वहां नहीं जाती, अगर तुमने वो सब नहीं किया होता, अगर तुम वक्त पर मनु को यहाँ नहीं लेकर आती, तो अनर्थ हो जाता, शायद आज मेरा बेटा नहीं होता। तुमने तो बहुत हिम्मत दिखाई, सब कुछ सहकर भी हिम्मत नहीं हारी, अकेले इतना सब बर्दाश्त किया और मानव को यहाँ तक लेकर आई। अगर आज मानव हमारे बीच है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। उन्होंने प्यार से इनाया के माथे को चूम लिया। ऐसे रोते नहीं बेटा, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। तुमने जो किया वो कोई और नहीं कर पाता, मुझे गर्व है तुम पर। अब रोना बंद, अपने मन से ये अपराध बोध मिटा दो। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा मनु को, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कोई गलत काम नहीं किया, बप्पा उसकी रक्षा करेंगे। अनीता जी ने एक बार फिर इनाया को अपने सीने से लगा लिया। इनाया के मन से एक भार सा उतर गया था, घुटन और गिल्ट कुछ कम हुआ, लेकिन दुख अब भी बहुत था। चंद घंटों ने उसकी पूरी दुनिया तहस नहस करके रख दी थी। अनीता जी का ममता भरा आंचल और प्यार, अपनेपन से भरे स्पर्श से वो धीरे धीरे शांत होने लगी। आंसू थमे तो अनीता जी ने एक बार फिर उसे खुद से दूर किया, चारों तरफ देखा। बेटा, मनु कहाँ है, कैसी हालत है उसकी? चिंता की तो कोई बात नहीं, डॉक्टर से बात करवाओ, मुझे अपने बेटे को देखना है, बस एक बार। मानव अंदर आईसीयू में है, इनाया ने पीछे आईसीयू की तरफ इशारा किया। उसकी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे ड्रग्स की हाई डोज दी गई है, जब तक उसे होश नहीं आ जाता वो कुछ नहीं कह सकते। अभी उसे ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं है, हम बस बाहर से उसे देख सकते हैं।
इनाया को डॉक्टर की बात याद आ गई। पहले उन्होंने इनाया को मिलने की इजाजत दे दी थी, लेकिन जैसे ही वो आईसीयू में उससे मिलने पहुंची, उसकी आवाज मानव के कानों के रास्ते उसके दिमाग तक पहुंची, तो उसकी कंडीशन बिगड़ने लगी। डॉक्टर नर्स सभी घबरा गए। इनाया को तुरंत बाहर निकाला गया। डर तो वो भी गई थी, कांपते कदमों से वो बाहर आई और निढाल सी चेयर पर घिर गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया और अब कंडीशन स्टेबल है, लेकिन अभी वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते, जरा सी लापरवाही भी उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए अब किसी को भी पेशेंट से मिलने की परमिशन नहीं है, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक उसे होश नहीं आ जाता। इनाया अनीता जी के साथ उठकर आईसीयू के गेट के पास आई और उस छोटे से कांच से झांककर अंदर हॉस्पिटल बेड पर बेजान से पड़े मानव को देखने लगी। टू बी कंटिन्यूड।